समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
यूं माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी।
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम।
जी हाँ, जिंदगी के चार दिन बहुत होते हैं, बशर्ते आपको जीना आना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभी जिंदगी को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये छोटी सी जिंदगी कितनी खास है। किसी की मुस्कुराहट हमारे लिए क्या मायने रखती है, किसी के लिए जीना कितनी बड़ी बात है। तो श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत करें जिंदगी जीने के साथ। एक प्यारी सी मुस्कान लिए, एक छोटी सी बात लिए और जीने का जज्बा लिए। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। स्माइल एंड स्माइल अवे, ओके, दैट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द प्रोग्राम आकर्षिता। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस। गेट रेडी फॉर एन इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ योर फेवरेट मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वी आर स्टार्टिंग विद सम न्यूज हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वीं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में कुल 14 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। यह दिवस उस दिन को मनाने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। प्रिया मंडल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Vice President of the United States of America, J.D. Vance, will arrive in New Delhi this morning on a four-day official visit to India. He will be accompanied by Second Lady of the U.S., Usha Vance, their children and senior members of the U.S. administration. Mr. Vance is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi this evening. During the meeting, both sides are expected to discuss ways to further deepen ties between the two countries. The U.S. Vice President and his delegation will have other engagements in Delhi and also scheduled to visit Jaipur and Agra before departing for Washington, D.C. We have more from our correspondent.
This will be the first visit of U.S. Vice President J.D. Vance to India. His visit will provide an opportunity for both sides to review the progress in bilateral relations and the implementation of the outcomes of the India-U.S. joint statement issued on 13 February this year during Prime Minister Narendra Modi's visit to the U.S. The two sides will also exchange views on regional and global developments of mutual interest. India and the United States enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor, driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contacts. Regular dialogue between the leaders of both sides is an important element of the expanding bilateral ties. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर जेद्दाह जाएंगे। पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र की ये पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की ये यात्रा भारत सऊदी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने संबंधों पर आधारित मजबूत और बहुमुखी आर्थिक साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का पांचवां और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav has said the Direct Benefit Transfer DBT initiative of Prime Minister Narendra Modi has saved 3,48,000 crore rupees by reducing leakage. Quoting a policy paper titled A Quantitative Assessment of India's DBT System, Mr. Vaishnav in a social media post said that under this welfare delivery model, the coverage of beneficiaries has increased by 16 times. According to the policy paper, the country's DBT system program implemented in 2013 has redefined welfare delivery by enhancing transparency, curbing leakages, ensuring precise fund distribution. This policy document evaluates a decade of data from 2009 to 2024 to assess DBT's impact on budgetary efficiency, subsidy rationalization, and social outcomes. It added that Aadhaar-linked authentication eliminated ghost beneficiaries, enabling coverage expansion without proportional fiscal.
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर शुरू होगा। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने के प्रयास जारी हैं। तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सेब और अन्य बागानों को बड़ा नुकसान हुआ है। रामबन जिले में कल बादल फटने से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भूस्खलनों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया था। पंथियाल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से कई वाहनों को नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। सेना के जवान यातायात बहाल करने में नागरिक प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। तेज बारिश के कारण आज रामबन जिले में स्कूल और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।
Canadian MP Chandra Arya has urged Hindu and Sikh communities in Canada to speak out and demand strong government action against Khalistani extremists. This follows a recent incident where the Lakshmi Narayan Mandir in British Columbia was defaced with pro-Khalistani graffiti. In a social media platform, Mr. Arya shared a video from the Canadian Hindu Chamber of Commerce condemning the vandalism and described it as a chilling reminder of the growing influence of Khalistani extremism in Canada. He warned that these extremist elements are becoming more organized and are trying to silence Hindu voices.
पेरू के लीमा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। फाइनल में कल रुद्रांश और आर्या की जोड़ी को नॉर्वे के जॉन हरमन हेग और जीनेट हेग ड्यूस्टैट से 11-17 से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में भारत का ये तीसरा रजत पदक है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। पदक तालिका में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। और अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें।
यस, वी आर स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। आकर्षिता, the Chennai Metropolitan Development Authority is set to build a sports centre in Royapuram at a cost of Rs. 9 crore. The facility will be built in an area of 1,557 square metre and will feature a still plus two-floor design. It aims to serve as a hub for a variety of indoor and outdoor sports with world-class training facilities. The facility will be opened within 6 months once the work order is issued. It will also include an outdoor cricket ground and football turf. Chennai Institute of Mathematical Sciences is planning to conduct a national meet on cosmetology titled Cosmic Connections, Bridging the Early and Late Universe from July 28 to August the 1st. The topics expected to be discussed are inflation, cosmic microwave background, primordial gravitational waves, cosmic dawn and insights from the James Webb Space Telescope, as well as dark energy and current cosmological tensions. The objective of the meeting is to foster collaboration within the Indian cosmology community and strengthen the country's participation in major international surveys and future missions.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल 1,111 जीपीएस सक्षम पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के बुराड़ी स्थित संत रेणकारी ग्राउंड में इन टैंकर्स को रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को जल संकट से मुक्ति दिलाने के अभियान में ये कदम निर्णायक साबित होने वाला है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कल से शुरू हो रही इस पहल से अब प्रत्येक टैंकर की निगरानी केंद्रीय कमांड सेंटर से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों में टैंकर माफिया फल फूल रहे थे और सिस्टम में बड़े स्तर पर उनके जरिए भ्रष्टाचार होता था। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि कल इन टैंकरों के साथ साथ डीजेपी टैंकर ट्रैकिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिल्लीवासी इस ऐप के जरिए पानी के टैंकर को ट्रैक कर सकेंगे, जिससे सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कल राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शहर के सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में 2 महिलाओं और 2 नाबालिग सहित कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार खींची ने कल शहर के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत के गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि वे निगम आयुक्त को पत्र लिखकर ये मांग करेंगे कि इस मामले में इसमें लिप्त सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में शहर के समयपुर बादली इलाके में 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से 27 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह उड़ीसा और बिहार के दूर दराज के इलाकों से राष्ट्रीय राजधानी में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने में शामिल था।
Bengaluru News Now. The proposed hike in minimum wages in Karnataka could lead to the closure of at least 20% of industries in Bengaluru's Peenya industrial area and prompt around 30% to shift operations to other states, industrialists have cautioned. According to a recent draft notification by the state government, highly skilled labourers would earn approximately Rs 30,000, while unskilled workers would receive around Rs 20,000. However, representatives of the Peenya Industries Association, PIA, said many industrialists from the area, one of the largest industrial hubs in the country, have approached them in the past week, expressing concerns over the wage hike. Scientists at the Raman Research Institute, RRI Bengaluru, have developed an affordable portable device for preliminary screening of sickle cell disease, SCD. Led by Professor Gautam Soni, the team created a technology that measures red blood cell stiffness, effectively distinguishing between healthy and SCD-affected cells. Akarshita?
जी, और अब खबरें मुंबई से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। श्री फडणवीस ने 22वें मुंबई लाइव इंडोस्कोपी पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि देश के हर व्यक्ति को सस्ती सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष में महाराष्ट्र में 10 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंडोस्कोपी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे महाराष्ट्र में पर्यावरण बचाओ पृथ्वी सुशोभित करो पहल का आयोजन करेगा। मंत्री पंकजा मुंडे ने सभी से इस पहल में भाग लेने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हर व्यक्ति को जीवित रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति मानती है कि जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जीने का हकदार है और ये सुनिश्चित करना समाज का कर्तव्य है। वे दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये समारोह भारत विकास परिषद के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पुणे और ढोले पाटिल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम लॉ कॉलेज रोड स्थित भंडारकर इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और सुशासन के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने वाले भारत के 3 सेवा संगठनों को तीसरा यशराज भारती सम्मान प्रदान किया। ये पुरस्कार जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किए गए।
And now moving to some news from Hyderabad. Telangana State Transport Minister Poonam Prabhakar stated that the vacancies in the Telangana State Road Transport Corporation, TGSRTC, will be filled soon. The minister said that the government will release a notification for 3,038 vacancies very soon. He said about 2,000 among them are driver posts and 743 are Shramik posts, while 84 deputy superintendents traffic. The posts to be notified include 114 deputy superintendent mechanical, 25 depot managers or assistant traffic manager, 18 assistant mechanical engineer posts, 23 assistant engineer civil, 11 section officers civil, 6 accounts officers, 7 medical officers general and 7 medical officers specialist posts.
Aur ab khabrein Kolkata se. पूर्वी रेलवे महिला विशेष लोकल रेलगाड़ियां चलाता है जिसमें पूरी 12 कोच वाली ट्रेन महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन अब कुछ कोचों को अनारक्षित कर दिया गया है। इस संबंध में पूर्वी रेलवे ने 20 अप्रैल को नोटिस जारी किया है। रेलवे द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 75% सीट क्षमता का उपयोग किया जा रहा है, वहीं 25% सीटें खाली जा रही थी, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने का अनुमान है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
और आइए अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। आज के ही दिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।
I'm Gumbrili taking you all back in time to 753 BC. On this day, that is April 21, Roman civilization was founded according to Rome's early legend. As the story goes, it was founded by the twins Romulus and Remus, who were raised by a she-wolf. And 1913, this day, preview show of Raja Harishchandra was held on this day at Olympia Cinema.
और आज के दिन ही 1960 में ब्राजीलिया को ब्राजील की राजधानी बनाया गया।
1956, that is, I'm going back in time a little bit more. Legend, the music legend Elvis Presley's Heartbreak Hotel smashed the charts, reaching number one all over the globe. And 1975, Farakka Barrage on the River Ganga, dedicated to the nation. And 1990, the first indigenously built missile cruiser boat, Vibhuti, was inaugurated and launched. And 1995, this day, medium-range Akash surface-to-air missile flight trial successful. 1996, this day, Sanjay Thapar of the IAF leader becomes the first Indian to parachute down to geometric North Pole and unfurl the flag. And also, Akashita, today is a big day. United Nations General Assembly designated this day in 2017 as World Creativity and Innovation Day to raise awareness of the role of creativity and innovation in all aspects of human development, to promote creative thinking, cultural, scientific, technological information. Of course, inspiring young people to embrace creativity and innovation is vital for preparing for the challenges and, of course, the opportunities of the future.
और आज के दिन ही 2006 में नेपाल नरेश ने चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। और 2008 में आज के दिन ही हीरो होंडा ग्रुप ने डिमलर एजी के साथ वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम गठित किया था। और आज के ही दिन 2008 में भारत व ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच तीसरा साझा अभ्यास गोवा के निकट कोंकण में शुरू हुआ था। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल की पुण्यतिथि है। इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा का जिक्र कीजिए, या फिर लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, हर तरफ इकबाल अपने शब्दों से लोगों को बांधते नजर आए हैं। आइए सुनते हैं उनके लिखे गीत की ये धुन।
Tributes to English novelist poet Charlotte Bronte, who was born this day in the year 1816. Of course, Charlotte was the eldest of the out of the three famous Bronte sisters, whose novels have become standards of English literature. And of course, we remember her classic Jane Eyre in 1847, the story of an independent young governess who overcomes hardships while remaining true to her principles. And today is also the birth anniversary of Elizabeth Alexandra Mary, more popularly known as Queen Elizabeth II. Elizabeth became queen following her father's death on 6 February 1952. And of course, she had married Prince Philip, Duke of Edinburgh, in 1947. Her 70-year reign was the longest of any British monarch.
आज शकुंतला देवी की पुण्यतिथि है। उन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी, जटिल गणनीय गणनाएं अत्यंत सरलता से मौखिक रूप से हल करने की कुशलता की वजह से उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम दिया गया था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। शकुंतला देवी के अंदर पिछली सदी के किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की क्षमता थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वे ज्योतिषी भी थी। इनके 84वें जन्मदिन पर गूगल ने उनके सम्मान में उन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। उन पर एक फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये डायलॉग।
Now say this is Astrid Moon asks you to multiply 85 into 85. Take the first digit which is 8 and multiply it by 8 plus 1 which is
9.
Multiply 8 into 9 which is
72.
Take the two fives from the units place and multiply them. 5 into 5 is?
25.
Put the two together and what's your answer?
72.
And friends, American musician Prince, who created groundbreaking music that fused funk, rhythm and blues, rock and roll and pop, was one of the biggest stars of the 1980s and 90s. He passed at age 57 from an accidental overdose of a painkiller. Prince, whose real name was Prince Rogers Nelson, had created more than 30 albums and won 7 Grammy Awards over a 40-year career. And despite his small stature, being only 5 feet 2 inches tall, he was a very talented basketball player, a child prodigy who played all the instruments and wrote all his songs. The legendary Purple Rain is playing in the background for Prince. Here goes.
Never want to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Such a shame my friend just had to win.
आज भारतीय सैनिक गबर सिंह नेगी की जयंती है। वे प्रथम विश्व युद्ध में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गढ़वाल उत्तराखंड के वीर सपूत थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी 39वें गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे। 10 मार्च 1915 को फ्रांस में न्यूवे चैपल नामक स्थान पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर असीम साहस, वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए गबर सिंह नेगी को ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्च सैन्य पदक विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक शहीद गबर सिंह नेगी थे। उनके मरणोपरांत से 21 अप्रैल उनके जन्मदिवस के मौके पर हर साल चंबा में स्थित उनके स्मारक पर गढ़वाल राइफल द्वारा रेतलिंग परेड कर उन्हें सलामी दी जाती है।
The very famous American humorist, journalist and novelist Mark Twain passed away this day in 1910. Twain acquired international fame for his travel narratives, especially The Innocent Abroad in 1869, Roughing It 1872 and Life on the Mississippi 1883, and for his adventure stories of boyhood, especially The Adventures of Tom Sawyer 1876 and Adventures of Huckleberry Finn 1885. And friends, she earned the moniker High Priestess of Soul, for she could weave a spell so seductive and hypnotic that the listener lost track of time and space as they became absorbed in the moment. She was Nina Simone, American singer, pianist, songwriter, civil rights activist, who died at age 70 this day in 2003 after battling cancer. Her music spanned styles including classical, folk, gospel, blues, jazz, R&B and pop. Birthday of famous former cricketer Venkat Raghavan, who started out for Derbyshire in English county cricket from 1973 till 1975, and later played Test cricket for Indian team and an umpire for the International Cricket Council Test panel. Besides this, he's a qualified engineer who went to college at Engineering Guindy, Chennai, and of course a recipient of Padma Shri. And friends, jazz music and most of the musicians came from the United States, but then there are some specialists from other continents as well who have popularized jazz from their own regions. Trumpeter, composer, bandleader and author Ian Carr was born this day in 1933. This champion of British jazz was a free thinker, a self-taught trumpeter who became an accomplished soloist, biographer, campaigner, journalist and dedicated teacher. He founded the pioneering jazz rock band Nucleus in 1969. You're listening to a tune from it called Elastic Rock. Here goes.
आज महाराजा करणी सिंह की जयंती है। महाराजा करणी सिंह को निशानेबाजी का जनक माना जाता है। वे बीकानेर के महाराजा थे। करणी सिंह को बंदूक का पहला अनुभव मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ, जब उन्होंने एक चिड़िया को अपने सही निशाने से मार गिराया। करणी सिंह ने क्ले पिजन ट्रैप प्रतियोगिता तथा स्कीट में 17 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर स्तर की प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। इन्होंने अपनी निशानेबाजी की यादगार लम्हों को एक पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिसका नाम है फ्रॉम रोम टू मॉस्को। वो पहले निशानेबाज थे जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
And friends, today is also the birth anniversary of Anthony Quinn, or Tony Quinn, Mexican-American actor who won 2 Academy Awards for Best Supporting Actor in Viva Zapata and Lust for Life. He starred in hundreds of movies, but possibly best known for Zoba the Greek Tycoon, The Guns of Navarone and Lawrence of Arabia.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
Stay tuned for coming up now is Samacha Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.